विद्यार्थियों सार कैसे करें, यह अभी एक महत्वपूर्ण पक्ष है और 12वीं कक्षा के लिए इसलिए जरूरी है कि जब आप प्रश्न पत्र करेंगे तो आपको शब्दों की सीमा दी गई होगी कि आप किसी प्रश्न को 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा, किन्हीं प्रश्नों को 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा। तो जब आपको सीमा दे दी गई तो इसका मतलब होता है कि उतने शब्दों में आप अपनी पूरी बात कह सकें। तो सार करना इसलिए भी जरूरी है कि आप विषय वस्तु के मूल भावों को पकड़ पाते हैं या नहीं। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब कार्यालय में कार्य करते हैं उस समय सार लेखन की बड़ी उपयोगिता होती है। वहां अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह विस्तार से सारी चीजों को देख सके, इसलिए संक्षेप में जो लिपिक होते हैं वे अपनी बात को फाइल पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आम जीवन में भी और कार्य क्षेत्र में भी
जी
सार लेखन की बहुत अधिक उपयोगिता है। और सार लेखन सामान्य तौर पर आप प्रश्न पत्र करते होंगे तो आपको लगता होगा कि इसको जो अनुच्छेद दिया गया है उसको थोड़ा छोटा कर दें, सार लेखन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, सार लेखन एक कला है
जी सर,
और उस कला में अपनी बात को प्रभावी तरीके से, रोचक तरीके से और जो भी अनुच्छेद में विषय कहा गया है उन सभी को लेकर सार को प्रस्तुत किया जाता है
जी।
इसलिए इसकी परिभाषा दी गई है कि पूरी सामग्री के आधार पर किया गया मसौदा ही सार है, जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे होता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। तो ये सार की उपयोगिता है। और सार का महत्व जो मैंने बताया कि जीवन के विभिन्न पक्षों में है, आम जीवन में भी हम उन्हीं व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो संक्षेप में अपनी बात कहते हैं, जो बहुत विस्तार करते हैं अपनी बातों का वो हमें पसंद नहीं आता।
बिल्कुल सर,
क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है
जी।
और अगर आप नौकरी में जाएंगे, कार्यालयों में काम करेंगे तो वहां पे हर जगह पे आपको इस कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा, हर फाइल में आपको कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करना पड़ेगा
जी।
तो इसलिए आप इस कला के बारे में जरूर जानें, खासतौर से अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं
जी।
वहां पे भी आप देखें कि वहां पे आपको सैकड़ों सूचनाएं मिलेंगी देश भर से, और अगर आप उप संपादक या सह संपादक हैं
जी,
तो आपका काम होगा कि उन सारी सामग्रियों को छांट कर कम शब्दों में मुख्य सामग्री को प्रस्तुत करना।
बिल्कुल।
तो इसलिए बहुत से ऐसे आजकल के जॉब हैं जहाँ पे सार लेखन की उपयोगिता है
जी सर।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें व्याख्या की जाती है किस कोई भी अनुच्छेद में, और उदाहरण दिया जाता है किसी अनुच्छेद में, और भावों को दोहराया जाता है
जी।
लेकिन जब हम सार करते हैं तो हम व्याख्या को हटा देते हैं, उदाहरणों को हटा देते हैं, और जहां पे दोहराव है, रिपीटेशन है, उसको भी हटा देते हैं, अलंकारों को भी हटा देते हैं, कोई कथन दिया गया है उसको भी हटा देते हैं
जी।
तो इस प्रकार जब सार लेखन आप करें तो इन बातों का ध्यान दें, उसमें मुहावरे लोकोक्तियां नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सार लेखन में बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं हम कि सार लेखन की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसमें पहला मुख्य बिंदु है मूल सामग्री का बोध
जी सर।
मान लीजिए कोई अनुच्छेद आपको दिया गया है प्रश्न पत्र में, अगर आपने उसे समझा नहीं है ठीक से तो आप उसके मूल तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मूल सामग्री का बोध होना चाहिए। दूसरा है मूल भाव की पहचान, किस भाव पर आधारित है, वो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है या ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है
जी।
और तीसरा है संबंधित भावों की पहचान। मान लीजिए आपने भाव की पहचान कर ली, लेकिन उन भावों से जुड़े किन किन पक्षों को उसमें प्रस्तुत किया गया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। फिर मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान, जैसा कि मैंने बताया
जी सर,
कि कई बार एक ही बात को अनेक अनेक वाक्यों में कहा जाता है, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, विस्तार देने वाले जो वाक्य होते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्ता का विस्तार, संज्ञा का विस्तार
जी,
उन सभी को आपको समझना पड़ेगा। अनावश्यक तो कौन कौन सी बातें उसमें हैं जो जरूरी नहीं है। इसीलिए सार में दो विधियां मानी गई हैं शिक्षार्थियों, एक तो त्याग विधि है और दूसरी परिवर्तन विधि है
जी।
त्याग विधि का मतलब होता है कि जो अनावश्यक शब्द है उसको आप छोड़ते जाएं, जो काम के नहीं है उनको हटा दें,
उनको हटा दें।
और इसमें लेखक देखता है कि जब वो कोई रचनाकार लिखता है तो उसके मन में तरह तरह के भाव आते हैं, वो कल्पना लोक में भी चला जाता है, वह अपनी बातों को विस्तार से कहता है। लेकिन जब आप सार लिख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मूल बात क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको सीखना पड़ेगा
जी सर,
तभी आप तो सारांश कर सकते हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि एक तिहाई शब्दों में उसको छोटा किया जाए, कोई भी अनुच्छेद है
जी।
परिवर्तन विधि में आप क्या करेंगे? परिवर्तन विधि में जो भी शब्दों का प्रयोग संधि और समास के रूप में किया गया है उनको आप स्क्रिप्ट पे लिखें। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हो कि पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण भगवान
जी सर,
अब हम यहाँ पे केवल पीताम्बर का प्रयोग कर सकते हैं है ना
जी।
उसी तरह से जो ईश्वर को न मानता हो केवल नास्तिक का प्रयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल सर,
तो यहाँ हमने शब्द का परिवर्तन कर दिया। इसीलिए सार संक्षेपण लिखते समय प्राय हम मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हैं, उनको रेखांकित करते हैं
जी।
और प्रमुख बिंदुओं को समेटते हुए अपनी भाषा में एक तिहाई शब्दों में उसको लिखते हैं। एक गणित विद्यार्थी ये भी करते हैं कि वे अनुच्छेद में से ही सेंटेंस उतार लेते हैं।
बिल्कुल,
और सोचते हैं कि दो तीन सेंटेंस उतार लिया और संक्षेप हो गया
जी।
तो ये भी गलत है, आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है। और निरर्थक शब्दों को जैसा मैंने बताया कि आप छोड़ते हुए चले। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि पत्रों और टिप्पणियों का सार लिखने में सावधानी क्या होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि कार्यालयों में पत्र लिखते हैं आप या टिप्पणियां लिखते हैं, नोटिंग जिसको कहते हैं
जी,
वहां आपको यह देखना चाहिए कि पत्र में जो बात कही जा रही है वह बात संक्षेप में कही जा सकती है क्या
जी,
या वहाँ जो उल्लेख किया जा रहा है वह आवश्यक है क्या
जी।
तो यहाँ आप पत्र भी लिखें, उसमें भी आप कोशिश करें कि 5-6 वाक्यों में पत्र लिखें
जी।
और जब टिप्पणी भी लिखें तो उसमें भी एक क्रम बनाया जाता है कि आप बुलेट पॉइंट्स में मुख्य बातों को वहाँ पे प्रस्तुत करें
जी,
ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट भी न जाए। इसलिए सार लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हो सकती हैं, जिनमें पहला है कि एक दो या अधिक बार मूल सामग्री को पढ़ना चाहिए
जी सर।
सामग्री में आई व्याख्याएं, उदाहरणों और भावों के दोहराव को रेखांकित करना चाहिए
जी जी।
मूल भाव को अलग कागज पर लिखना चाहिए, मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग एक तिहाई आकार में सार संक्षेपण करना चाहिए
जी।
आवश्यक होने पर मूल भाव के आधार पर संक्षेपण का शीर्षक लिखना चाहिए
जी,
लिखित सार को पढ़ना और देखना चाहिए कि उसमें मुख्य बात तो नहीं रह गई, और आवश्यक होने पर उसका संपादन करना चाहिए।
जी बिल्कुल सर।
इसमें एक और बिंदु आया कि शीर्षक देना।
जी जी।
तो कोई भी अनुच्छेद आपको दिया गया हो, उसका जो शीर्षक आप बनाए वो आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए।
बिल्कुल सर।
और सटीक भी होना चाहिए,
क्योंकि सर हम देखते हैं, हम किसी भी कोई अगर सीरियल देखते हैं या कोई पत्र है, कोई भी चीज हम करते हैं, तो उसका शीर्षक जो होता है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हमें ये चीज देखनी चाहिए किसके अंदर है क्या। तो ये जो है ना शीर्षक का चयन सर बहुत ही जरूरी एक प्रक्रिया होती है सार लिखने में।
हाँ हाँ। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई लोग जो है शीर्षक देख कर ही सीरियल देखते हैं।
जी सर बिल्कुल सर, वही कह रही थी।
हाँ, तो कहानी घर घर की, जब शीर्षक ऐसे रहता है
जी,
तो हमारे मन में भी होता है कि घर घर की कहानी है क्या।
बिल्कुल सर,
है ना। तो शीर्षक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और खासतौर से अगर एडवर्टाइजमेंट में देखें आप
जी,
है ना
जी सर,
जो विज्ञापन है उसमें तो सार संक्षेपण का पूरा बहुत ही इसको क्या कह सुंदर रूप आपको दिखाई देगा।
बिल्कुल सर, बहुत ही कम चीजों में पूरा एक एड बन जाता है, विज्ञापन दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सार का जो उदाहरण है सर, हम एक एडवर्टाइजर की विज्ञापन को दे सकते हैं।
हाँ, वहाँ पे ये चूंकि वहाँ एक एक सेकंड का बहुत खर्च होता है
जी,
तो वहाँ पे कम शब्दों में और हाव भाव के द्वारा भी अपनी सारी बातों को कहना होता है।
जी सर बिल्कुल।
तो इसलिए बहुत ही जरूरी है
जी।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष पे हम बात कर लें कि जो रिपोर्ट लिखते हैं हम, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है उसको रिपोर्ट लिखते हैं हम
जी,
है ना, या ऑफिस में जो है रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है
जी,
बच्चों को परीक्षा में भी रिपोर्ट लेखन का एक प्रश्न आता है
जी सर।
तो यहाँ रिपोर्ट लिखने में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें मुख्य बात यह है कि जब भी कोई भी रिपोर्ट बनाई जाती है, मान लीजिए कि फाइनेंस कमेटी की कोई रिपोर्ट बनी
जी सर,
है ना
जी,
तो इतनी बड़ी होती है, 200-250 पेज की होती है।
बिल्कुल सर।
उसको संक्षेप में करना कितना कठिन काम होता है
जी,
लेकिन जब अखबार वाले होते हैं तो उसको कितना संक्षेप में आपको बुलेट फॉर्म में दिखा देते हैं उसको, है ना
जी।
या सरकार का कोई निर्णय हुआ, जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में बहुत सारे सरकार के नियम बन रहे हैं, तो जो पत्रकार होगा या जो बहुत ही अच्छा लेखक होगा वो संक्षेप में आपको सारी बातें बता देगा
जी सर।
तो ये जो रिपोर्ट लेखन है, संक्षिप्तता में अपनी बात को कहना, ये बहुत बड़ी कला है।
बिल्कुल सर।
और हम चाहेंगे कि शिक्षार्थी आप जरूर प्रयास करें कि जब भी आपको कोई भी अखबार का समाचार मिलता है उसको संक्षेप में लिखने की कोशिश करें।
बिल्कुल सर।
और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब बड़ी रिपोर्ट होती है तो उसमें बहुत सारे आय व्यय के आंकड़े दिए गए होते हैं
जी,
तो जब संक्षेप करते हैं तो आंकड़ों को नहीं देते
जी,
उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं।
सर हम ये भी कह तो सकते हैं ना कि सार में जब भी हम सार लिखते हैं किसी चीज का भी करते हैं, तो भाई छोटी सी एक गलती भी है ना उस विषय को ही बदल के रख देती है। तो तो हमें खासतौर पर सर सार लिखते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज पे विषय पे लिख रहे हैं और उसका आधार क्या है।
और एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो सार लेखन जो लोग लिखते हैं
जी,
उनको विषय का ज्ञान होता है
जी सर।
अगर आपको विषय का ज्ञान नहीं, मान लीजिए फाइनेंस का मैटर है
जी सर,
अगर आपको पता नहीं है कि महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो आप संक्षेप नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल,
है ना
जी।
मान लीजिए कोई दार्शनिक बात हो, फिलोसफी की का कोई पैसेज आ गया आपके पास
जी,
अब आप तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दर्शन की बात कर रहा है कोई, है ना, अब वो आपकी समझ में आया नहीं, तो आप संक्षेप कैसे करेंगे।
बिल्कुल सर।
तो इसलिए विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, किताबें, समाचार पत्र या और भी जितने साधन हैं आपके, टीवी सुनना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता जाए
जी।
अब मान लीजिए कि अभी कोरोना काल है, तो इस समय तो बहुत से सारे समाचार चारों तरफ आ रहे हैं
जी सर।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोना के बारे में आप 10 पंक्तियां लिखे तो संक्षेप में लिखना मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल सर, हम वो तो लिख सकते हैं जितना हम जान पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं या देख रहे हैं आज इतने दिनों से, हम वो चीज तो लिख देंगे। लेकिन अगर उसके अंदर की चीजें हमसे पूछी जाए कि उसमें होता क्या है, किस वजह से होता है, कितनी तरीके का होता है, तो शायद हमें रिसर्च ही करना पड़ेगा इसके ऊपर।
इसीलिए कह रहे हैं कि सार के लिए जरूरी है कि आपको विषय का भी पता हो,
बिल्कुल
तब जाकर आप कर पाएंगे। तो हमें समय की सीमा है, मैं 2 मिनट रह गए हैं, मैं सोचूंगा कि इसको संक्षेप में बता दूं
जी
कि मुख्य मुख्य बातें इस पाठ में क्या क्या हैं।
जी सर,
पहला है मूल सामग्री में से विस्तार देने वाली बातों, जैसे उदाहरण, उद्धरण, अलंकार आदि को हटाकर मूल सामग्री का सार लिखा जाता है। दूसरा है कार्यालयी कामकाज को जल्दी और ठीक ठीक ढंग से निपटाने के लिए पत्रों तथा टिप्पणियों का सार बनाया जाता है। सार की सहायता से एक अधिकारी कई सहायकों का काम सीमित समय में देख सकते हैं।
जी।
तीसरा है संक्षेपण या सार लेखन के लिए मूल सामग्री के मूल भाव को समझना आवश्यक है। चौथा है सार संक्षेपण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर होती है कि वह कितनी सावधानी से बनाया गया है। अगला है सार मूल सामग्री का लगभग 1/3 होता है।
जी सर।
इसके बाद है अच्छा सार वही होता है जिसमें पूर्णता हो, संक्षिप्तता हो, स्पष्टता हो, संबद्धता हो और प्रभावोत्पादकता हो।
जी।
और एक और महत्वपूर्ण बात है कि सार लेखन से कार्यालय कार्यों को निपटाने में सुगमता होती है और समय और शक्ति की बचत होती है।
बिल्कुल।
इसके अलावा रिपोर्ट अगर हम लिखते हैं तो उसे लिखते समय हमें संक्षिप्तता का ध्यान देना चाहिए और मुख्य बातों का पता होना चाहिए।
जी।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे लगता है कि आज की चर्चा से आपको एक पूरा चित्र समझ में आ गया होगा कि अच्छा कैसे लिखें और सार कैसे लिखें, यह एक कला है
जी।
और इसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और तभी आप प्रश्न पत्र भी ठीक से कर पाएंगे और इस कला के माध्यम से कम शब्दों में अपनी बात को भी प्रस्तुत कर पाएंगे।